اب آپ یہ سارے سوال اپنے ذہن پہ خود لیجئے، بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ جو شخص تمہارے رب کی اس کتاب کو جس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے دونوں یکساں؟ 2 سیکنڈ کا غور کر لیجئے بس. نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں. ہم نے کوئی عہد کیا تھا اللہ سے؟ اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے. ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن رابطوں کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ان کو برقرار رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کی خاطر صبر سے کام لیتے ہیں. پھر سورہ یوسف یاد آ گئی، فصبر جمیل، اللہ کے لیے صبر کروں گی، مجھے اپنی ذات کے لیے کسی سے کچھ گلا نہیں ہے. نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گی، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے. امیجن کریں اپنے جنت میں جانے کو. اور ان کے ابا اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کے اولادوں میں سے بھی جو صالح ہوں گے. صالح کون؟ ہو کین ڈیزرو، نصب ناطے رشتے سے نہیں، صرف اپنی قابلیت کے ساتھ لوگ جنت میں جائیں گے. فرمائے وہ بھی وہاں ان کے ساتھ کر دیے جائیں گے، ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا آج اس کی بدولت تم اس کے مستحق ہوئے ہو. بس کیا خوب گھر ہے آخرت کا، رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے. دیکھیے آخر میں صبر کی بات آ گئی، سلام علیکم بما صبرتم. مومن کی پوری زندگی صبر ہے. علم سیکھا نہیں جا سکتا صبر کے بغیر، سکھایا نہیں جا سکتا صبر کے بغیر، والنٹیئر کیا نہیں جا سکتا صبر کے بغیر، مال لگایا نہیں جا سکتا دین پہ صبر کے بغیر، اور اسی طرح سے آپ کہہ لیجئے صبر وہ کرنسی ہے جس سے جنت ملے گی، لیکن یہ ٹائم باؤنڈ ہے. اور حقیقت ہے کہ جب مسلمانوں کو اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ کی طرف جاتے ہیں، تو پھر ان کو دنیا کی کوئی چیز بڑی نہیں لگتی. اور رہ گیا رزق، کیونکہ جب دین کی بات آتی ہے لوگوں کو رزق کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے، ہائے کیا کریں، کھائیں کیسے، پیے کیسے، گھر کیسے چلے گا. تو کہا تمہارے کوششوں سے نہیں، اللہ کے دینے سے جاتا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے. یہ لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہیں. سوچئے کہیں میں تو دنیا میں مگن نہیں ہوں. حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں. If you will compare this world with آخرہ, this world is nothing. کچھ نہیں ہے. اس سے پوچھے جو دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، سب اس کے ہاتھوں کی چوڑیاں اتر جاتی ہیں، کانوں کی بالیاں اتر جاتی ہیں، انگوٹھیاں اترتی ہیں، کچھ ساتھ نہیں جاتا. کروڑوں میں کھیلنے والا، ڈائمنڈز پہننے والا دنیا میں ہی چلا جاتا ہے. برانڈیڈ کپڑے پہننے والے کا کفن برانڈیڈ نہیں ہوتا. پھر پوچھو سناؤ کیا اور کمانا چاہیے تھا. ایک دن تو انسان کو مرنا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں رہ کے اس کی فکر لگا دے. یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کو ماننے سے انکار کر دیا، کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری. کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، رب اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. اس کو ہائی لائٹ کریں. اللہ صرف اس کو اپنا راستہ بتاتا ہے جو آنا چاہے، جیسے آپ اسی کو اپنے گھر کا ایڈریس سمجھاتی ہیں جو آنا چاہتا ہے. سچ ہے نا؟ آج شام کو بھی ایک درس ہے ایک سسٹر کا، سسٹر فائزہ کے گھر کے پاس ہے، اور انہوں نے بھی اوپن انویٹیشن دیا. آپ میں جو جانا چاہیں 7:30 ٹل افطاری بھی ہے، تو آپ لوگ سسٹر فائزہ سے ایڈریس لے لیں، وہ آپ کو دے دیں گی. آپ اس شوق میں جائیں گے کہ چلیں درس بھی سن لیں گے، افطاری بھی ہو جائے گی، سب سے مل بھی لیں گے، تو آپ کو اس کا بھی اجر ہے. تو راستہ مل جائے گا نا. تو آپ کے نہیں، ہم نے نہیں جانا، تو کیا زبردستی ہم آپ کو ان کا ایڈریس دیں گے؟ تو اللہ بھی نہیں دیتا. لکھ لیں کیا میں نے اللہ سے اس کا ایڈریس مانگا، تو اس کے لیے پھر من اناب رجوع کرنا. کون ہوتے ہیں منیب؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا، اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. खबरदार रहो, अल्लाह की याद वो चीज़ है जिससे दिलों को इत्मीनान नसीब हुआ करता है। फिर जिन लोगों ने दावते हक को माना और नेक अमल किए वो खुश नसीब हैं और इनके लिए अच्छा इंजाम है। अला बिज़िक्रिल्लाह, है ना खूबसूरत आयत। जिक्र दिल की जिंदगी है। लोग कहते हैं म्यूजिक इज फूड ऑफ द सोल, तो बताइए कि फिर ऐसे लोग खुदकुशी क्यों करते हैं, वो रोते क्यों हैं? कभी आप ग्लैमरस लोग जिनके फैन और एसी होते हैं ना, आप उनकी जरा इंडिविजुअल लाइफ देखें, पिटी मिजरेबल, घरेलू जिंदगी बर्बाद, शौहर कहीं बीवी कहीं, सब नहीं होंगे ऐसे, मैं नहीं किसी को जानती, लेकिन आम देखा गया ऐसे लोगों की जिंदगी में सुकून नहीं होता। कई की शादियां इधर टूट रही उधर जुड़ रही, और फिर नतीजा क्या होता है कि अपने आप को पीछे करते हैं। वो किसी की बात अच्छी लगी कि नॉन मुस्लिम को गम होता है तो वो लीकर शॉप पे जाता है, और मुसलमान को गम होता है तो वो जिक्र शॉप पे जाता है। ये किताब आपको भी कई गमों से बेनियाज कर देती होगी यहाँ बिठाकर। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें ये इत्मीनान दे दे। अल्लाह की जात है जिसने ये सब कुछ दिखा दिया, और जिसको सच्चा इस्लाम मिल गया उसकी जिंदगी में अल्लाह की याद आ गई। यकीन ही नहीं आता कि आज भी इस्लाम में इतनी खैर हो सकती है कि पूरी दुनिया को ये खैर दे सकता है। तो एक दफा इस बात को आम करके देखिए कि इससे सुकून मिलता है। आप अगर सबसे ये चीज जरूर शेयर किया करें, क्या मिलता है वहां जाके? पीस, तत्मन्नल कुलूब, मिलता है कि नहीं? एक अजीब ट्रैंक्विलिटी, पीस, ऐसे लगता है हल्की हल्की ओस दिल पे बरसती है। और वो कहते हैं ना, वो जैसे खाना खा लें तो पेट भर गया, नजर नहीं भरी, कहते इस खाने को पैक करा के ले जाओ। इस तरह यहां वो फीलिंग्स होती हैं कि दिल करता है हाय ये वक्त कभी ना खत्म हो, ये खत्म हो गया तो ये फीलिंग चली जाएंगी, कोई इसको पैक कर दे, मैं इसको बाकी दिन के लिए अपने साथ रखो। ऐसी ठंडी फुहार दिल पे पड़ती होगी आपके। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। गुनाहों वाली जिंदगी अजाब वाली जिंदगी होती है, इतनी तलख हो जाती है वो जिंदगी के लोग जिंदा नहीं रहना चाहते। और कुरान इतना सुकून देता है, लोग कहते हैं इत्मीनान ही अब मिला, सुकून अब मिला। टूटे हुए दिलों वाले आते हैं इस कुरान की महफिलों में, दिल जुड़ जाते हैं। टूटी हुई हड्डियों वाले आते हैं, उनकी हड्डियां जुड़ जाती हैं। बीमार आते हैं, उनकी बीमारियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि ये बेनियाज हो जाते हैं इर्द गिर्द से। अल्लाह हमें ऐसे ही दे दे। फिर जिन लोगों ने दावते हक को माना और नेक अमल किए वो खुश नसीब है और इनके लिए अच्छा इंजाम है। नबी इसी शान से हमने आपको रसूल बनाकर भेजा एक ऐसी कौम में जिससे पहले बहुत सी कौमें गुजर चुकी, ताकि आप इन लोगों को वो पैगाम सुनाएं जो हमने आप पर नाजिल किया, इस हाल में कि अपने बहुत मेहरबान खुदा के काफिर बनने में। हाईलाइट करिएगा इसको, बड़े मेहरबान रब के मुनकिर बनते हो। इनसे कहो वही मेरा रब है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसी पर मैंने भरोसा किया और वही मेरा मलजा मावा है। और क्या हो जाता अगर हम कोई ऐसा कुरान उतार देते जिसके जोर से पहाड़ चलने लगते, या जमीन शक हो जाती, या मुर्दे कब्रों से निकलकर बोलने लगते। इसी तरह की निशानियां दिखा देना कुछ मुश्किल नहीं, बल्कि इख्तियार सारे का सारा अल्लाह के हाथ में है। यानी ये कुरान तो दिलों को फाड़ता है, तुम किन मौजजों की बात करते हो? फिर कहले ईमान अभी तक कुफार की तलब के जवाब में किसी निशानी के जहूर की आस लगाए बैठे, और वो ये जानकर मायूस नहीं हो गए कि अगर अल्लाह चाहता तो सारे इंसानों को हिदायत दे देता। जिन लोगों ने अल्लाह के साथ कुफर का रवैया अख्तियार किया, उन पर उनके करतूतों की वजह से कोई ना कोई आफत आती ही रहती है, या इनके घर के करीब कहीं नाजिल होती है। ये सिलसिला चलता रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह का वादा आन पूरा होगा। यकीनन अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। और अल्लाह का वादा क्या? कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, अल्लाह मोमिनों को निजात देता है। अल्लाह आज भी मोमिनों से किए हुए वादे पूरे करे और हमें अल्लाह से किए हुए वादे निभाने की तौफीक दे। रह गए आपके ऊपर जो मुश्किल हालात आए तो डोंट वरी, वलकद इस्तुख्जिया बिरुसुल मिन कब्लिक, आपसे पहले भी बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया जा चुका है, मगर मैंने हमेशा मुनकरीन को ढील दी और आखिरकार इनको पकड़ लिया। फिर देख लो मेरी सजा कैसी सख्त थी। फिर क्या वो जो एक एक मुतनफिस की कमाई पर नजर रखता है, इसके मुकाबले में जसारतें की जा रही हैं, जुर्रतें की जा रही हैं कि लोगों ने इसके कुछ कुछ शरीक ठहरा रखे हैं। सोचिए 3 सेकंड तक, ये अल्लाह की सिफत है, हर बंदे की कमाई पे नजर है उसकी, नेकियां कमा रहे के बदियां। ऐ नबी इनसे कहो अगर वाकई वो अल्लाह के अपने बनाए हुए शरीक हैं तो जरा इनके नाम लो कि वो हैं कौन। क्या तुम अल्लाह को एक नई बात की खबर दे रहे हो जिसे वो अपनी जमीन में नहीं जानता, या तुम बस यूं ही जो मुंह में आता है कह डालते हो? हकीकत है कि जिन लोगों ने दावते हक को मानने से इनकार किया, इनके लिए इनकी मक्कारियां खुशनुमा बना दी गईं और वह राह रास से रोक दिए गए। यानी लोग जब दीन से दूर होते हैं तो नाराज नहीं होते, दुखी नहीं होते, वो खुश होते हैं, वो कहते हैं हम बहुत खुश हैं। फिर जिसको अल्लाह गुमराही में फेंक दे से कोई राह दिखाने वाला नहीं, ऐसे लोगों के लिए दुनिया की जिंदगी में अजाब है और आखिरत का अजाब इससे भी ज्यादा सख्त है। कोई ऐसा नहीं जो अल्लाह से इनको बचाने वाला हो। अल्लाह से डरने वाले इंसानों के लिए जिस जन्नत का वादा किया गया उसकी शान तो ये है। सोचिए जरा कैसी खूबसूरत है वो जन्नत कि जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी। इसके फल दायमी हैं और इनका साया लाजवाल है। ये इंजाम है मुत्तकी लोगों का और मुनकरीन हक का इंजाम ये है। एक लफ्ज है यहाँ, अन्नार, आग, दोजख की आग। कौन सा इंजाम अच्छा, हर एक को जान समझ है इसकी। ए नबी, जिन लोगों को हमने पहले किताब दी वो इस किताब से जो हमने तुम पर नाजिल की खुश हैं, और मुख्तलिफ गिरोहों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसकी बास बातों को नहीं मानते। आप साफ कह दीजिए, मुझे तो बस एक अल्लाह की बंदगी का हुक्म दिया गया और इससे मना किया गया कि इसके साथ किसी को शरीक ठहराऊं, लिहाजा मैं तो इसी की तरफ दावत देता हूं और इसी की तरफ मेरा रजू है। दुआ कीजिए यही जुमला हमारी जुबान पे भी आ जाए। मैं सिर्फ एक रब की तरफ बुलाता हूँ, मुझे और किसी की तरफ रजू नहीं करना। इसी हिदायत के साथ हमने ये फरमाने अरबी तुम पर नाजिल किया। अब अगर तुमने इस इल्म के बावजूद जो आपके पास आ चुका लोगों की ख्वाहिशों की पैरवी की, तो अल्लाह के मुकाबले में ना कोई तुम्हारा हामी मददगार है और न इसकी पकड़ से तुमको बचा सकता है। अल्लाह ना करे हम कभी इस किताब को पाकर छोड़ दें और इसके बदले में कुछ और ले लें। तुमसे पहले भी हम बहुत से रसूल भेज चुके। आप यहां से नोट कीजिए कि ये सूरतें जब नाजिल होती थी तो अल्लाह के नबी कितना बोझ महसूस करते थे। और कहीं आप ये नहीं पढ़ेंगे कि गुस्सा ना करें, यही आएगा गम ना करें। क्योंकि सच्चा दीनदार लोगों की बेदीनी पे गुस्सा नहीं करता, दुख करता है कि इनको क्यों इस चीज की कदर नहीं। तो अल्लाह अपने नबी को तसलियां देते हैं, तुमसे पहले भी हम बहुत से रसूल भेज चुके, इनको हमने बीवी बच्चों वाला ही बनाया था। यानी बीवी बच्चों के साथ ही दीन के काम करने हैं, ये रुकावट नहीं है। इनको बैरियर ना बनाओ अपने दीन के रास्ते में, इनको ब्रिज बनाओ। ये धोखे लोग कहते हैं, नहीं ये शौहर नहीं आने देते, बीवियां नहीं आने देती, बच्चे रुकावट है। कहा नबियों ने तो बच्चों बीवियों के साथ काम कर लिया, तुम्हें क्या मसला है। और किसी रसूल की भी ये ताकत ना थी कि अल्लाह की इज़्ज़त के बगैर कोई निशानी खुद लाता। हर दौर के लिए किताब है, अल्लाह जो कुछ चाहता है मिटा देता और जिस चीज को चाहता है कायम रखता है। उम्मुल किताब इसी के पास है, ये तकदीर से मुतल्लिक आयत है। अल्लाह ताला तकदीर की कुछ बातों को बदलता है, कुछ को नहीं बदलता। दुआओं से तकदीर बदल जाती है, नेकियों से उम्र में इजाफा हो जाता है, सिला रहमी से उम्र बढ़ जाती है। इसी तरह से जब इंसान कोई गुनाह करता है तो उसको खैर मिलनी खत्म होती है। तो तकदीर का मौजू भी समझने के काबिल है। इस पे भी कमी होती है तो उसकी वजह से बाज़ लोग अल्लाह ताला से नाराज हो जाते हैं। और फरमाया नबी, जिस बुरे इंजाम की धमकी हम इन लोगों को दे रहे हैं, इसका कुछ हिस्सा ख्वाह हम आपको जीते जी दिखा दें या इसके जहूर में आने से पहले हम आपको उठा लें, बहरहाल आपका काम सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है और हिसाब लेना हमारा काम है। जस्ट कन्वे द मैसेज। क्या ये लोग देखते नहीं हम इस सर जमीन पर चले आ रहे हैं और इसका दायरा हर तरफ से तंग करते आ रहे हैं। अल्लाह हुकूमत का रखो इसके फैसलों पर नजरसानी करने वाला नहीं, और इसे हिसाब लेते कुछ देर भी नहीं लगती। तो फिर अल्लाह से डरो दूसरों से डरने की निस्बत। इनसे पहले जो लोग हो गुजरे वो भी बड़ी बड़ी चालें चल चुके, मगर असल फैसला कुन चाल तो पूरी की पूरी अल्लाह ही के हाथ में है। वो जानता है कौन क्या कुछ कमाई कर रहा है और अन करीब ये मुनकरीन हक देख लेंगे कि इंजाम किसका बखैर होता है। وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا। इससे भी कोई बड़ी ढिठाई होगी जो इधर बयान की गई। क्या ये मुनकरीन कहते हैं तुम अल्लाह के भेजे हुए हो ही नहीं, यानी हम तुम्हें रसूल ही नहीं मानते। कहो मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की गवाही काफी है, फिर उस शख्स की गवाही जो किताब आसमानी का इल्म रखता है। कौन है किताब आसमानी का इल्म रखने वाला? कुरान पढ़ने वाले लोग। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें ये गवाही देने वाला बना दे।